ग सामवेद संहिता एक सामन साम का अर्थ सामन या साम का अर्थ गीति युक्त मंत्र है। साम के लिए गीति युक्त होना अनिवार्य है। ऋग्वेद के मंत्र ऋक या ऋचा जब विशिष्ट गान पद्धति से गाए जाते हैं तब उनको साम कहते हैं। अतएव पूर्व मीमांसा में गीति या गान को साम कहा गया है। गीतिषु सामाख्या ऋग्वेद में स्तोत्र रूप या गीति रूप मंत्र को आगुष्यम साम कहा गया है। आगुष्यम का अर्थ है स्तोत्र या गीति रूप। इससे ज्ञात होता है कि जब मंत्र या ऋचा गीति के रूप में प्रस्तुत की जाती है तो उसे साम कहते हैं। ऋग्वेद और सामवेद का अन्योन्याश्रित संबंध है। ऋचा धन गान बराबर सामन है। गीति युक्त ऋचा साम हो जाती है। इस भाव को अथर्वेद ऐतरेय ब्राह्मण छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषदों में अनेक रूप से प्रकट किया गया है। कहीं पर सामान्य रूप से और कहीं पर आलंकारिक रूप में साधन अम बराबर साम स या सा ऋचा धन अम कोष्ठक में गीति बराबर सामन। इसका अभिप्राय है कि स या सा ऋग्वेद है और अम संगीत है। दोनों के मिश्रण से साम बनता है। सा धन अम सामन पति पत्नी के तुल्य ऋग्वेद और सामवेद का संबंध है। क या ऋक् तत् साम ख ऋचि अध्यूढ़ साम ग अमोहमस्मि सा त्वम सामाहमस्मि ऋक् त्वम द्यौरहम पृथ्वी त्वम ताविह संभवाव प्रजामा जनयावहै घ सा च अमश्चेति तत् साम्नः सामत्वम। बृहदारण्यक उपनिषद में स्पष्ट लिखा है कि गान ही सामवेद का स्वत्व है। गान ही सामवेद का स्वरूप और अस्तित्व है। तस्य हैतस्य साम्नो यः स्वमवेद तस्य स्वर एव स्वम। मीमांसा सूत्रों की व्याख्या में शबर स्वामी ने भी यही भाव प्रकट किया है कि कुछ विशेष प्रकार से ऋचाओं के गान को साम कहते हैं। विशिष्टा काचित गीति सामेत्युच्यते। दो सामवेद का दार्शनिक और आध्यात्मिक रूप। ब्राह्मण ग्रंथों में सामवेद के दार्शनिक और आध्यात्मिक रूप का वर्णन किया गया है। सामवेद उपासना का वेद है। इसमें अध्यात्म परक मंत्रों का मुख्य रूप से संकलन है। अतः इसका आध्यात्मिक रूप होना चाहिए। यजुर्वेद का कथन है कि सामवेद प्राण तत्व है अर्थात सामवेद से प्राण शक्ति की वृद्धि होती है। शतपथ ब्राह्मण और जैमिनी उपनिषद ब्राह्मणों में भी यही बात कही गई है। सामवेद को ऋग और गीति का समन्वय मानने पर जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण का कथन है कि यह वाक् तत्व और प्राण तत्व का समन्वय है। सा अम बराबर साम वाक् शब्द ब्रह्म है और प्राण उसमें शक्ति है। सामवेद सूर्य का प्रतिनिधि है अतः इसमें सौर ऊर्जा है। सूर्य सर्वत्र समभाव से विद्यमान है अतः समत्व के कारण सूर्य सामवेद है। सम का ही भावार्थक रूप साम है। सामवेद सूर्य है और सामवेद के मंत्र सूर्य की किरणें हैं अर्थात सामवेद से सौर ऊर्जा मनुष्य को प्राप्त होती है। सामवेद में साम द्यूलोक है और ऋक् पृथ्वी है अतः सामवेद द्यू और भू का समन्वय है। इस प्रकार ज्ञात होता है कि सामवेद तीन प्रमुख शिक्षाएं देता है। समत्व की भावना जागृत करना जहाँ जहाँ समत्व है वहाँ साम या सामवेद है। समत्व बुद्धि समत्व का प्रकाशन और समत्व के प्रतिष्ठा साम की प्रतिष्ठा है। समन्वय की भावना ऋक् और साम का समन्वय द्यू लोक और पृथ्वी का समन्वय है। पति पत्नी का एकीकरण है। जीवन में समन्वय की भावना जागृत करना सामवेद की महत्वपूर्ण शिक्षा है। साम प्राण है। जीवन में प्राण शक्ति या आत्मशक्ति को उद्भूत करना मानव का लक्ष्य है। प्राण और अपान शक्ति के समन्वय से आध्यात्मिक उन्नति करना ही योग एवं साधना है। सामवेद का महत्व। वेदों में सामवेद के महत्व के प्रमुख कारण ये हैं। एक सामवेद वेदों का सार है। शतपथ और गोपथ ब्राह्मण का कथन है कि सारे वेदों का रस या सार सामवेद है। दो साम के बिना यज्ञ अपूर्ण है। शतपथ ब्राह्मण का कथन है कि सामगान के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। तीन सामवेद में सौर ऊर्जा है। शतपथ का कथन है कि सूर्य से सामवेद की उत्पत्ति हुई है अतः यह सूर्य पुत्र है। इसमें सूर्य की शक्ति है। चार सामवेद का सार द्यूलोक है। जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण का कथन है कि प्रजापति ने सामवेद का रस लेकर द्यूलोक की रचना की वही रस सूर्य के रूप में हुआ। पांच बृहद देवता का कथन है कि जो सामवेद को जानता है वही वेद के रहस्य को जान सकता है। छह गीता में कृष्ण ने सामवेद को सर्वोच्च स्थान दिया है और उसे परमात्मा का रूप माना है। 7 छांदोग्य उपनिषद में ऋचाओं का सार सामवेद बताया गया है और सामवेद का सार उद्गीत कोष्ठक में प्रणव ओमकार ओम कोष्ठक बंद। इस उद्गीत की संसार का सबसे बहुमूल्य रस बताया गया है। इस प्रकार सामवेद ओम कोष्ठक में परमात्मा का प्रतिपादन करता है। 8 सामवेद गीतिमय या संगीत का वेद है। संगीत संसार की सर्वश्रेष्ठ विद्या है, अतः चारों वेदों में सामवेद का गुणगान है। सामवेद का गान करने वाले को सामग कहकर उसकी प्रशंसा की गई है। 9 सामवेद जागरूकता का प्रतीक है, अतएव ऋग्वेद में कहा गया है कि जो जागरूक है उसको ही ऋग्वेद और सामवेद पसंद करते हैं। 10 सामगान देवस्तुति और देवों को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय है। शुद्ध हृदय से किया गया सामगान सभी देवों को आकृष्ट कर लेता है, इसलिए ऋग्वेद में कहा गया है कि शुद्ध मन से सामगान करें। 4 सामवेद का स्वरूप। सामवेद के दो मुख्य भाग हैं, एक पूर्वार्चिक दो उत्तरार्चिक। आर्चिक का शाब्दिक अर्थ है ऋचाओं का समूह या संकलन। एक पूर्वार्चिक, इसमें 4 कांड हैं, क आग्नेय, ख ऐन्द्र, ग पवमान, घ आरण्य कांड और परिशिष्ट के रूप में महानामनी आर्चिक। पूर्वार्चिक में 6 अध्याय हैं, अध्यायों के खंड किए गए हैं, इनको दशति नाम दिया गया है। दशति का अर्थ 10 ऋचाएं हैं, परंतु प्रत्येक दशति में 10 संख्या या प्रतिबंध नहीं है, कहीं कम और कहीं अधिक। अध्याय 1 आग्नेय कांड है, अध्याय 2 से 4 तक ऐन्द्र कांड है, अध्याय 5 पवमान कांड है, अध्याय 6 आरण्य कांड है। इसी का परिशिष्ट महानामनी आर्चिक 10 मंत्र है। विषय और मंत्र संख्या आदि की दृष्टि से पूर्वार्चिक का विवरण यह है, कांड विषय अध्याय खंड मंत्र विवरण। 1 आग्नेय अग्नि देवता 1, 12, 114 1 से 114। 2 ऐन्द्र इंद्र देवता 2 से 4 12, 352 115 से 466। 3 पवमान सोम देवता 5, 11, 119 467 से 585। 4 आरण्य इंद्र अग्नि सोम 6, 5, 55 586 से 640। महानामनी आर्चिक इंद्र परिशिष्ट पूर्वार्चिक मंत्र संख्या 650। अध्याय 1 से 5 तक की ऋचाओं को ग्राम गान कहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि इनका गान ग्रामों में होता था। अध्याय 6 आरण्य कांड है, इसकी ऋचाओं का गान अरण्य में होता था। 2 उत्तरार्चिक, इसमें 21 अध्याय या 9 प्रपाठक हैं और मंत्रों की संख्या 1225 है। उत्तरार्चिक में कुल 400 सूक्त हैं, इनमें 287 सूक्तों में प्रत्येक में 3-3 मंत्रों का समूह है। 66 में 2-2 मंत्र हैं और शेष 47 सूक्तों में 1 से 12 तक मंत्र समूह हैं। मंत्र संख्या विचार, सामवेद के पूर्वार्चिक में 650 मंत्र हैं और उत्तरार्चिक में 1225। इस प्रकार पूरे सामवेद की मंत्र संख्या 1875 है, इसमें ऋग्वेद से संकलित ऋचाएं 1771 हैं। अतः सामवेद में केवल 104 मंत्र ही नए हैं। ऋग्वेद के 1771 मंत्रों में भी 267 मंत्र पुनरुक्त हैं तथा सामवेद के 104 नए मंत्रों में भी 5 पुनरुक्त हैं। अतः पुनरुक्त मंत्रों की संख्या 272 है। इस प्रकार ऋग्वेद में सर्वथा अप्राप्त मंत्र केवल 99 हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि सामवेद में ऋग्वेदीय मंत्र 1504 धन पुनरुक्त 267 बराबर 1771, सामवेद में नवीन मंत्र 99 धन पुनरुक्त 5 बराबर 104, कुल मंत्र संख्या 1875। सामवेद में ऋग्वेद से लिए गए अधिकांश मंत्र मंडल 8 और 9 से हैं। ऋग्वेद के नवम मंडल से संग्रहित मंत्र 645 और अष्टम मंडल से 450 मंत्र हैं। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के शेष सभी मंडलों से भी कुछ मंत्र लिए गए हैं। इनमें प्रथम मंडल से 237 मंत्र और दशम मंडल से 110 मंत्र हैं। शेष मंडलों से गृहित मंत्रों की संख्या न्यून है। शतपथ ब्राह्मण में सामवेद के अक्षरों की भी गणना प्रस्तुत की गई है। शतपथ के अनुसार सामवेद के 4 सहस्र बृहती छंद 36 अक्षर के बराबर अक्षर हैं, अर्थात 4000 × 36 बराबर 144000। 5 सामवेद की स्वतंत्र सत्ता। ऋग्वेद और सामवेद के संबंध के विषय में कुछ भ्रांतियां हैं जिनका निराकरण आवश्यक है। कतिपय भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों की धारणा है कि सामवेद की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अपितु यह गान के निमित्त संग्रहित ऋचाओं का संकलन मात्र है। यह धारणा वस्तुतः भ्रांत एवं निर्मूल है। इसके कतिपय कारण ये हैं। एक, यदि गान या साम के लिए ही संकलित मंत्रों का संग्रह सामवेद होता तो इसमें केवल वे ही मंत्र होते जो सामगान के लिए अपेक्षित थे, परंतु ऐसा नहीं है। सामवेद में 450 मंत्र ऐसे हैं जिन पर गान नहीं होता है। ऐसे मंत्रों का संग्रह सामवेद में नहीं होना चाहिए था। दो, सामवेद में प्राप्त अधिकांश ऋग्वेदीय ऋचाओं में आंशिक साम्य है। कहीं पर पाठभेद है, कहीं पाद व्यत्यय है, कहीं अपूर्ण ऋचा है। यदि वस्तुतः ऋग्वेद से ये ऋचाएं ली गई होती तो इनमें पाठभेद आदि नहीं होता और ऋचा आंशिक न होकर पूर्ण रूप से ली जाती, जैसे ऋग्वेद का पाठ अपोमहिव्ययति, सामवेद का पाठ अपोमहि वृणुते, ख ऋग्वेद अरम वहंती मन्यवे, सामवेद अरम वहंत्याशवः। इसी मंत्र में ऋग्वेद में युक्ष्वा प्रयोग है और सामवेद में युंग्श्वा। इसी प्रकार शब्दों की वर्तनी में भी अंतर है, जैसे क ऋग्वेद इदम विष्णुः पांसुरे, सामवेद पांसुले। इसी मंत्र में ऋग्वेद में समूहलम पाठ है, सामवेद में समूढ़म। इसी प्रकार ऋग्वेद परित्यम हर्यतम हरिम का केवल एक पाद ही सामवेद में परित्यम हर्यतम हरिम दिया गया है, शेष तीन पाद छोड़ दिए हैं। यह आंशिक साम्य है। इस प्रकार के उदाहरण अनेक हैं। तीन, यदि सामवेद के मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए होते तो सर्वथा या अंशतः ऋग्वेद के क्रम से ही होते, परंतु ऐसा नहीं है। चार, ऋग्वेद और सामवेद में सरांकन पद्धति में पूर्णतया भेद है। ऋग्वेद उदात्त, अनुदात्त और स्वरित है। सामवेद में 1, 2, 3 अंक हैं। ये नारदीय शिक्षा के अनुसार क्रमशः मध्यम म, गांधार ग और ऋषभ रे स्वर के बोधक हैं। ऋग्वेद और सामवेद के मंत्रों के उच्चारण में भी पूर्ण भिन्नता है। ऋग्वेद के मंत्र द्रुत गति से बोले जाते हैं और सामवेद के विलंबित गति से। पाँच, ऋग्वेद में स्वयं सामवेद से संबंध ये शब्द 37 बार आए हैं, जैसे साम 13 बार, सामगा इव 1, सामगाम 1, सामन 3, सामनाम 1, सामनौ 1, सामान्य सामभि 4, सामानी 4, सामनः 1, सामना 1, सामने 2 आदि। ऋग्वेद में साम, सामानी, सामगा आदि शब्दों का 37 बार उल्लेख सिद्ध करता है कि सामवेद और सामगान की प्रक्रिया ऋग्वेद से प्राचीन है। छह, ऋग्वेद में 4 ऋतुजों में सामगानकर्ता का उद्गाता के रूप में उल्लेख है। इसी मंत्र में शक्कुरी छंद में गान का वर्णन है। बृहत साम, रथंतर साम आदि का ऋग्वेद में उल्लेख है। इससे ऋग्वेद से पहले सामवेद को सत्ता ज्ञात होती है। सात, ऋग्वेद में स्वयं ऋग साम यजुह की एक साथ सत्ता स्वीकार की गई है। इस मंत्र में ऋग्वेद यजुह साम और अथर्व चारों वेदों की एक साथ परमात्मा से उत्पत्ति वर्णित है। मनुस्मृति में भी यही वर्णन है कि ये वेद सनातन नित्य हैं और उनकी उत्पत्ति क्रमशः अग्नि वायु और आदित्य से हुई है। आठ, आचार्य सायण आदि भी सामवेद की स्वतंत्र सत्ता मानते हैं, अतएव उन्होंने ऋग्वेद के बाद सामवेद पर स्वतंत्र भाष्य लिखा है। नौ, ऋचि अध्यूढ़ साम गीयते, छांदोग्य उपनिषद के इस कथन का भाव है कि ऋचा का आशय लेकर सामगान होता है। ऋचा ऋग्वेद और सामवेद दोनों में है। सामवेद की प्राचीन शाखाओं में ये ऋचाएं थी, इन शाखाओं का ही वर्तमान रूप सामवेद है। सामवेद में ऋग्वेद से मौलिक अंतर है, दोनों की विभाजन पद्धति पृथक है। ऋग्वेद में मंडल और सूक्त है, सामवेद में कांड, अध्याय, दशति आदि दोनों की विषय वस्तु भिन्न है, दोनों का कार्य भिन्न है। ऋग्वेद देवस्तुति है, सामवेद संगीत। उक्त विवरण से ज्ञात होता है कि सामवेद की स्वतंत्र सत्ता है, यह ऋग्पद आश्रित नहीं है अपितु स्वतंत्र सामवेदीय प्राचीन शाखा पर आश्रित है। छह, सामवेद की शाखाएं महाभाष्य में पतंजलि ने सहस्र वर्तमा सामवेद कहा है, इसी प्रकार सहस्राध्वा सामवेद भी कहा गया है। इनका अर्थ यह लगाया गया है कि सामवेद की 1000 शाखाएं थी, परंतु वर्तमान और अध्वन का वस्तुतः शाखा अर्थ नहीं है अपितु यह गीति के 1000 भेदों का संकेत करता है। सामवेद के एक मंत्र से इस बात की पुष्टि होती है कि मंत्र में सहस्त्र वर्तनी शब्द का प्रयोग करते हुए कहा गया है कि मैं गायत्री त्रिष्टुप जगती छंद वाले मंत्रों को सहस्त्र प्रकार से गाता हूँ। मंत्र में वर्तनी शब्द का अर्थ प्रकार मार्ग या भेद है। गाये सहस्र वर्तनी गायत्रम त्रैष्टुभम जगत। मीमांसा सूत्र अर्थैकत्वाद विकल्प स्यात् पर शबर स्वामी ने अपने भाष्य में कहा है कि सामवेदे संति सहस्रम गीत्युपायाः, अर्थात सामवेद में सहस्रों प्रकार के गान की विधियां हैं। श्री सत्यव्रत सामश्रमी और श्री सातवलेकर आदि ने भी यही मंतव्य उपयुक्त बताया है। इस प्रकार की पुष्टि इस बात से भी होती है कि साम तर्पण में केवल 13 सामवेदी आचार्यों को स्मरण किया जाता है। यदि 13 से अधिक शाखाकार होते तो उनका साम तर्पण में या अन्यत्र उल्लेख मिलता। साम तर्पण में इन 13 शाखाकारों का उल्लेख मिलता है। राणायन, शाट्य, मुग्रय, व्यास, भागुरी, औलुंडी, गोलगुलवी, भानु मानव उपमन्यु, काराटी, मशक, गार्ग्य, वार्षगव्य, कुथुम, शालिहोत्र, जैमिनी, त्रयोदशैते में सामगाचार्याः स्वस्ति कुर्वन्तु तर्पिताः। 1. राणायन, राणायनी। 2. शाट्यमुग्रय, सात्यमुग्नी। 3. व्यास। 4. भागुरी। 5. औलुंडी। 6. गोलगु लवी। 7. भानुमान औपमन्यौ। 8. काराटी। 9. मशक गार्ग्य। 10. वार्षगव्य। 11. कुथुम। 12. शालिहोत्र। 13. जैमिनी। प्रपंच, हृदय, दिव्यावदान, चरण व्यूह और जैमिनी गृह सूत्र में भी 13 शाखाओं के नाम मिलते हैं, परंतु नामों में कुछ भेद है। भागवत विष्णु पुराण और वायु पुराण में भी शाखाओं का उल्लेख है। इन पुराणों के अनुसार वेद व्यास के शिष्य जैमिनी हैं। जैमिनी ने अपने पुत्र सुमंतु को, सुमंतु ने सुनवान को और सुनवान ने अपने पुत्र सुकर्मा को सामवेद की शिक्षा दी। सामवेद के विस्तार का श्रेय सुकर्मा को ही है। सुकर्मा के 2 शिष्य थे, 1 हिरण्यनाभ कौशल्य, 2 पौशंजी। हिरण्यनाभ का शिष्य कृतम था। कृत ने सामवेद के 24 प्रकार के गान स्वरों का प्रवर्तन किया। कृत के अनुयायी होने के कारण सामवेदी आचार्यों को कार्त कहा जाता था। चतुर्विंशतिधायेन प्रोक्ता वै साम संहिता स्मृतास्ते प्राच्य सामानः कार्ता नामेह सामगाः। उपर्युक्त 13 शाखाओं में से आजकल केवल 3 शाखाएं ही उपलब्ध हैं। 1. कौथुमीय, राणायनीय, जैमिनीय। इनका ही संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है। कौथुमीय, कौथुम शाखा। आजकल यही शाखा सर्वत्र प्रचलित है। संहिता की दृष्टि से कौथुमीय और राणायनीय संहिताओं में कोई मौलिक भेद नहीं है। दोनों में वे ही मंत्र हैं और उनका क्रम भी वही है। दोनों में केवल गणना पद्धति का अंतर है। कौथुमीय शाखा का विभाजन अध्याय, खंड और मंत्र के रूप में है। राणायनीय शाखा का विभाजन प्रपाठक, अर्ध प्रपाठक, दशति और मंत्र के रूप में है। श्री सातवलेकर ने सामवेद संहिता के अपने संस्करण में दोनों पद्धतियों का साथ साथ उल्लेख किया है। दोनों पद्धतियों में स्वरों के उच्चारण में कुछ भेद है तथा कहीं कहीं पाठ भेद भी है। जैसे जैमिनी हाउ कहते हैं और राणायनी उसमें व जोड़कर हावू कहते हैं। इसी प्रकार राई को राणायनी यह जोड़कर राई बोलते हैं। पाठ भेद की दृष्टि से कौथमी वाजेशु नो और राणायनी वाजेशु नो पाठ करते हैं। इस प्रकार दो स्वरों के बीच या वह जोड़ना तथा वर्तनी में न कुण और स को श पाठभेद राणायनी शाखा में है। सामवेद के प्रातिशाख्य पुष्प सूत्र के अन्य नाम कुसुम सूत्र और कौसुम सूत्र भी है। इस आधार पर कुछ विद्वान का विचार है कि कौथुम शब्द का प्राचीन रूप कौसुम रहा होगा, उसका ही रूपांतर कौथुम शब्द है। पुष्प सूत्र कौथुम शाखा से संबद्ध है। कौथुमीय शाखा का की ही एक शाखा तांड्य है। इसका ही विशालकाय ब्राह्मण तांड्य महाब्राह्मण है, जिसे पंचविंश ब्राह्मण भी कहते हैं क्योंकि इसमें 25 अध्याय हैं। किसी समय इस शाखा का बहुत प्रचार था। शंकराचार्य ने वेदांत भाष्य में तांड्य का अनेक बार उल्लेख किया है। प्रसिद्ध छांदोग्य उपनिषद का संबंध तांड्य शाखा से है। शंकराचार्य ने छांदोग्य उपनिषद के भाष्य में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है और छांदोग्य को तंडिनाम उपनिषद कहा है। इस शाखा का प्रचार विंध्य के उत्तर में अर्थात उत्तर भारत में और राणायनीय शाखा का प्रचार दक्षिण भारत में अधिक रहा। ख रणायनी शाखा ऊपर लिखा जा चुका है कि कौथुमी और रणायनी शाखाओं के मंत्रों तथा उनके क्रम में कोई भेद नहीं है, केवल गणना की विधि में अंतर है। रणायनियों के अनुसार विभाजन प्रपाठक, अर्ध प्रपाठक, दशति और मंत्र के रूप में है। पाठ भेद और कुछ उच्चारण भेद अवश्य है, इनका संकेत ऊपर किया गया है। रणायनियों की ही एक शाखा सात्यमुग्री है। पतंजलि ने महाभाष्य में तथा आचार्य आपिशलि ने सात्यमुग्री और रणायनियों की एक महत्वपूर्ण भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं बताई हैं कि वे ए और ओ के दो रूप मानते हैं। क शुद्ध ए ओ दो ह्रस्व ए ओ ह्रस्व ए ओ को अर्ध ए ओ भी कहते हैं। इसमें ए और ओ का बहुत हल्का उच्चारण होता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण विचार माना जाता है। प्राकृतिक में और आधुनिक प्रांतीय भाषाओं में ए और ओ का उच्चारण ह्रस्व भी किया जाता है। इस शाखा का विशेष प्रचार दक्षिण भारत में रहा है। ग जैमिनीय शाखा सामवेद की जैमिनीय शाखा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी संहिता डॉक्टर रघुवीर ने लाहौर से प्रकाशित की थी। श्री सातौलेकर ने सामवेद संहिता के परिशिष्ट में जैमिनीय शाखा के पाठ भेदों का पूरा विवरण दिया है। कौथुम शाखा में 1875 मंत्र हैं और जैमिनी में 1687। इसे ज्ञात होता है कि जैमिनीय शाखा में 188 मंत्र कम हैं। जैमिनीय शाखा के उत्तरार्चिक में अनेक मंत्र ऐसे हैं जो कौथुमीय शाखा में उपलब्ध नहीं हैं। यद्यपि जैमिनीय शाखा में कौथुम से मंत्रों की संख्या कुछ कम है, तथापि सामगान की दृष्टि से जैमिनीय शाखा अधिक समृद्ध है। कौथुमीय गान केवल 2722 है, परंतु जैमिनी गानों की संख्या 3681 है, अर्थात 959 गान अधिक है। जैमिनीय शाखा इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसकी संहिता, ब्राह्मण, शौत सूत्र और गृहसूत्र सभी उपलब्ध हैं। इसकी एक अवंतर शाखा तलवकार है, जिसे संबद्ध प्रसिद्ध केन उपनिषद है। तलवकार श्री जैमिनी के शिष्य माने जाते हैं। सामवेद का प्रतिपाद्य विषय। सामवेद मुख्य रूप से उपासना का वेद है। इसमें मुख्य रूप से अग्नि, इंद्र और सोमदेव से संबद्ध मंत्र है। इन देवों की स्तुति, प्रार्थना और उपासना है। इसमें सोमयाग और पौमान सोम से संबद्ध मंत्रों की संख्या अधिक है। सोम शब्द न केवल सोमयाग और पौमान सोम से संबद्ध है, मंत्रों की संख्या अधिक है। सोम शब्द न केवल सोमरस का ही बोधक है, अपितु यह उपासना के लक्ष्य सौम्य गुणों का भी सूचक है। इन सौम्य गुणों की प्राप्ति के लिए सामगान किया जाता है। सोम शब्द परमात्मा के लिए भी है, अतः उपासना के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति लक्ष्य है, इसके लिए सामगान है। सामगान भक्ति भावना और श्रद्धा जागृत करने के लिए किया जाता है। पूर्वार्चिक में अग्नि, इंद्र और पवमान सोम से संबद्ध मंत्र संकलित किए गए हैं। इन मंत्रों को सामगान की दृष्टि से लय के साथ स्मरण करना होता है। प्रत्येक मंत्र की लय स्मरण होनी चाहिए। इनका प्रयोग उत्तरार्चिक में होता है। उत्तरार्चिक में द्विक, त्रिक या चतुष्क आदि हैं, इनमें इन लयों का प्रयोग होता है। अधिकांश ऋक, चतुष्क आदि का प्रथम मंत्र साम योनि मंत्र पूर्वार्चिक का होता है, उसी की लय पर वह पूरा सूक्त, त्रिक या चतुष्क आदि गाया जाता है। यज्ञों के समय उद्गाता इन मंत्रों का गान करता है। इस दृष्टि से यजुर्वेद और सामवेद का घनिष्ठ संबंध ज्ञात होता है। गान में प्रयुक्त मंत्र ऋचा है, अतः ऋग्वेद आधारभूत है। इस प्रकार सामवेद एक ओर ऋग्वेद से और दूसरी ओर यजुर्वेद से संबद्ध है। सामवेद में सोम, सोमरस, सोमपान, सोमयाग का विशेष महत्व है, अतः इसे सोम प्रधान वेद कह सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से सोम ब्रह्म शिव तत्व या परमात्मा है, उसकी प्राप्ति का साधन उपासना है। सामवेद संगीत एवं भक्ति के द्वारा परमात्मा प्राप्ति का उत्तम साधन है। वर्ण विषय की दृष्टि से सामवेद के विषय में रोचक तथ्य यह है कि सामवेद का प्रारंभ शांत रस से होता है। प्रथम मंत्र अग्नि या ही वितय में अग्नि की स्तुति है। सामवेद की समाप्ति वीर रस से है। इस सूक्त में 27 मंत्र हैं। इसमें इंद्र योद्धा के रूप में वर्णित हैं। वह शत्रु सेना से युद्ध करता है और शत्रुओं की 100 सेनाओं पर विजय प्राप्त करता है। वह आग्नेय और तामस अस्त्र जैसे दिव्य अस्त्रों को छोड़ता है। अंत में भद्रम करड़े भी और स्वस्ति न इंद्रो से ग्रंथ की समाप्ति होती है। इसका अभिप्राय यह है कि सामवेद अध्यात्म के लिए भी वीर रस, सक्रियता और संघर्ष की शिक्षा देता है। यह महादेव के शिव और शक्ति रूप या शिव और रुद्र के समन्वय की भावना प्रस्तुत करता है।